समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं नेहा गोस्वामी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो नेहा, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज माय को-होस्ट नेहा गोस्वामी, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकवादी मारे गए। श्री शाह ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया।
डिस्कशन अंडरवे इन लोअर हाउस एंड राज्यसभा।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा तट पर प्रलय मिसाइल के लगातार 2 सफल परीक्षण किए।
एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान सेज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेस रोड मैप टू प्रमोट वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इन इंडिया।
मौसम विभाग का आज राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान।
एंड इंटरनेशनल टाइगर डे इज बीन सेलिब्रेटेड टुडे टू रेज अवेयरनेस फॉर द कंजर्वेशन एफर्ट्स वर्ल्ड वाइड। And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about International Tiger Day and completion of 5 years of National Education Policy 2020. Tiger, tiger, burning bright, in the forests of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? In what distant deeps or skies burned the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? Well, this was an excerpt from the poem The Tiger by William Blake, and today we celebrate the magnificent creature, the tiger.
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने खूब कहा है, जब कोई व्यक्ति बाघ का शिकार करना चाहता है तो वह इसे खेल कहता है, वहीं जब कोई बाघ उसे मारना चाहता है तो वह इसे क्रूरता कहता है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। यह दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में बाघों की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता को याद दिलाने पर जोर देता है।
Yes, and how ironic is it, listeners, that tigers, the animals which are themselves symbols of power, strength today, need to be conserved and saved by humans. Well, International Tiger Day was started in 2010 in response to an alarming decline of nearly 97% of the world's wild tiger population. And at that time, it was estimated that only 3,000 tigers were left in the wild.
जी, इसलिए वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देने और बाघों को बचाने के लिए रणनीतिक प्रयास करने के उद्देश्य से ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव ने 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस शिखर सम्मेलन में 13 बाघ क्षेत्र वाले देश यानी भारत, रूस, बांग्लादेश, चीन, भूटान, नेपाल, वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया बाघों के संरक्षण के लिए एक साथ आए।
Yes, and tigers whose scientific name is Panthera tigris weighs about 220 to 660 pounds and has the length of around 6 to 10 feet. And our listeners would be surprised to know that similar to human fingerprints, each tiger's stripe pattern is unique. Individual tigers can be identified by the distinct stripes, which are documented using camera trap images. And this method helps estimate population numbers, whether within a protected area or on a larger scale for an entire country.
बाघ एकांत प्रिय और प्रादेशिक प्राणी होते हैं, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बाघ काफी उत्कृष्ट तैराक भी होते हैं। वे ज्यादातर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों, सदाबहार वनों, समशीतोष्ण वनों, मैंग्रोव दलदलों, घास के मैदानों और सवाना में पाए जाते हैं.
Yes, and in India they reside in the Shivalik Gangetic Plains, Central India and Eastern Ghats, Western Ghats, Northeastern Hills and Brahmaputra, floodplains and Sundarbans. And did you know that, Neha, that India harbors almost 75% of the world's wild tiger population? And some 100 years ago, Asia was home to nearly 1 lakh tigers.
हालांकि अभिषेक, अवैध व्यापार, अवैध शिकार, जलवायु परिवर्तन और अनेक प्राकृतिक आवास के विनाश के कारण ये संख्या काफी कम हो गई है. आज बाघ जमीन के एक छोटे से हिस्से पर ही रह गए हैं. ये खंडित वन क्षेत्रों और संरक्षित अभयारण्यों तक ही सीमित रह गए हैं.
Yes, and high demand for tiger bones, skins and other body parts, resulting in illegal hunting and trafficking and expanding human settlements, agriculture, logging and infrastructure projects, reduced natural tiger habitats to just 7% of the original range.
जी, जैसे जैसे बाघ अपना प्राकृतिक आवास खोते हैं, वे अक्सर मानव बस्तियों की ओर भटक जाते हैं. इससे अक्सर खतरनाक मुठभेड़ें होती हैं और कई बार बाघ मारे भी जाते हैं. बदलते मौसम पैटर्न और बढ़ता तापमान भी बाघों के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है. आज बाघ विश्व भर में सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक हो गए हैं.
Yes, and well, tigers are more than just majestic creatures, as their presence is crucial for maintaining ecological balance, specifically in Asia. And the tiger is not only a national animal, but also a symbol of an ecosystem. And as top predators or and an umbrella species, tigers play a crucial role in maintaining the balance of the planet's ecosystems.
जी, बिल्कुल. बाघ पारिस्थितिक पिरामिड के शीर्ष पर हैं. वे हिरण जैसे अन्य शाकाहारी जीवों का शिकार करते हैं, लेकिन शाकाहारी जीवों को खाने के लिए पर्याप्त बाघों की कमी के कारण वे अत्यधिक चराई कर सकते हैं और भूमि को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण का संतुलन बिगड़ सकता है.
Yes, and did you know, listeners, that the tigers also play a crucial role in mitigating climate change? Well, the landscapes inhabited by tigers store more carbon than any other forest worldwide. And in fact, the protected forests within tiger reserves in Asia are the most effective carbon storage areas on the planet. And thus, by conserving tigers, we are not just protecting a specific species, we are also safeguarding our endangered ecosystems.
जी, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बाघ संरक्षण में भारत की उल्लेखनीय सफलता पर प्रकाश डाला. एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि 58 अभयारण्यों और 3,682 बाघों के साथ देश बाघ संरक्षण में दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर उभरा है.
एंड मिनिस्टर भूपेंद्र यादव सेड दैट टाइगर कंजर्वेशन इज नॉट जस्ट अबाउट सेविंग द स्पीसीज. द मिनिस्टर एडेड दैट राइजिंग नंबर्स ऑफ टाइगर्स आल्सो सिंबलाइज द हेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट दे इनहैबिट. And Mr. Yadav urged everyone to take a pledge to protect tigers and the ecosystems, as it also supports livelihood opportunities for communities.
इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री भूपेंद्र यादव ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में 11 नए बाघ अभयारण्य जोड़े गए हैं, जिनकी संख्या 2014 में 47 से बढ़कर अब 58 हो गई है. उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बाघ गठबंधन पर भी काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य 97 देशों में दुनिया की 7 प्रमुख बाघ प्रजातियों का संरक्षण करना है. आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति विस्तरीय शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है, एक दार्शनिक रूपरेखा के रूप में कार्य करती है. श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक परिवर्तनकारी पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करती है.
2014 में जहां देश में 47 टाइगर रिजर्व होते थे, उनकी संख्या बढ़कर 58 हो गई है. हमने टाइगर की संख्या को बढ़ाया ही है, साथ ही साथ उनके रिजर्व एरिया का भी विस्तार करा. इस बार इंटरनेशनल टाइगर डे के अवसर पर दिल्ली जू में एक हफ्ते की प्रदर्शनी लगाई है. हम स्कूलों के बच्चों को बुला करके न केवल उनको टाइगर के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और दिल्ली जू में घुमाकर नेचर के प्रति उनके मन में एक कॉन्शियसनेस का भाव जागरण करने का काम कर रहे हैं.
Yes, and so to conclude our discussion on International Tiger Day, remember, without the roar of tigers, the jungles would be a silent ecosystem. And so to make sure that the tiger's roar echoes is all of our responsibility. And moving on to the second part, that is the National Education Policy. The National Education Policy 2020 completes its 5 years today, and the launch of NEP laid out an ambitious roadmap to transform India's schools into spaces where learning is no longer confined to textbooks, marks, or memorization. And a correspondent reports that over the past 5 years, the policy has laid the foundation for a more inclusive, learner-focused and future-ready education system in India. We have a report.
National Education Policy 2020's impact is visible across every stage of learning through meaningful reforms. Initiatives like Nipun Bharat and Vidya Pravesh have benefited over 4.2 crore students across around 9 lakh schools. Indian Sign Language is now a subject with over 1,000 ISL videos and talking books developed. The 5+3+3+4 structure and National Curriculum Framework for School Education 2023 promote experiential and competency-based learning. CBSE board exams now include 50% competency-based questions, and subjects are offered at two levels. Over 4 lakh teachers have also been trained under the Nishtha Teacher Training Program. Other initiatives, including Bal Vatikas, Jadui Pitara, and Prashast app, have further promoted multilingual, inclusive, and holistic education. Adarsh for Akashvani News, Delhi.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
Goa's capital city, Panaji, has clinched the top spot as the cleanest city in India in the category of towns with a population between 20,000 to 50,000 in the Swachh Sarvekshan 2024-25, and the award presented by President Draupadi Murmu at Vigyan Bhavan in New Delhi is a major milestone in the state's sanitation and waste management journey. And we have a report.
What it did to the pride was Prime Minister Narendra Modi himself highlighting Panaji's achievement and city's innovative waste segregation practices in his latest Mann Ki Baat broadcast.
Goa ke Panaji shahar ka udaharan bhi prerak hai. Wahan kachre ko 16 category mein baanta jata hai aur iska netrutva bhi mahilaen kar rahi hain. Panaji ko to Rashtrapati Puraskar bhi mila hai.
Health Minister of Goa Viswajit Rane called the award a moment of pride for all Goans.
It is a vision of the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who has actually brought into every household the thought process of cleanliness and swachhata. I am so grateful to the vision of the Prime Minister and to the Honorable Prime Minister for bringing this type of a movement in the country. Every municipality, every ULB today is working towards the vision of the Prime Minister.
It is noteworthy that Sun Clean City in Goa was also conferred the state level award for promising Swachh Sahar under the same Swachh Sarvekshan framework. Sun Clean Municipal Chairperson Siddhi Prabhu Porob, in her heartfelt statement, said,
"Yeah, स्वच्छ सर्वेक्षण में यह प्रतिष्ठित सम्मान केवल एक पुरस्कार नहीं बल्कि उन हजारों हाथों की मेहनत की पहचान है जिन्होंने बिना थके बिना रुके हर सुबह से पहले जाकर इस शहर को एक नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प किया है।
Showcasing its commitment to cleanliness, state is taking initiatives like door-to-door waste collection and scientific treatment of waste while showing world the pathways for a better future. निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी न्यूज, पणजी।
जम्मू और कश्मीर सरकार इस केंद्र शासित प्रदेश को परिणामोन्मुखी, समावेशी और नवाचार संचालित कौशल विकास के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित करना चाहती है। जम्मू और कश्मीर में कौशल विकास पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव लाने के लिए कई प्रमुख घटक हैं। इनमें प्रस्तावित कौशल विश्वविद्यालय प्लेटफार्मों का डिजिटल एकीकरण, हरित और उभरते रोजगारों पर ध्यान केंद्रित करना और एमएसएमई तथा उद्यमिता नेटवर्क के साथ तालमेल शामिल है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
The Jammu and Kashmir government is committed to create sustainable skilling pathways aligned with the national vision of Viksit Bharat. The government is working on aligning skilling with the aspirations of the youth and the demands of a dynamic economy. Talking to Parikrama, J&K Director of Skill Development Department, Shahzad Alam talked about the skilling scenario and plans with regard to transforming skilling ecosystem in Jammu and Kashmir.
ये जो skill plan है, वो है skilling for all. उसमें जो है school में जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें कैसे जो है स्किल्स के मॉड्यूल हम इंट्रोड्यूस कर सकें, स्पेशली जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको कैसे हम फर्स्ट ईयर से ही स्किलिंग के कुछ ना कुछ मॉड्यूल्स उसमें एक काफी स्ट्रक्चर्ड मैनर में जो है वो हम उनको दे सकें। एंड कॉलेज के बाद अगर बच्चे निकल जाते हैं उसके आगे भी हैंड होल्डिंग की जरूरत है, और उसके बाद अगर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है उसके लिए अगर स्किलिंग की जरूरत है, तो ये स्किलिंग को एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्किलिंग फॉर ऑल इसमें हमारा फोकस है। स्किलिंग का दायरा स्कूल में हो, कॉलेजेस में में हो, यूनिवर्सिटीज में हो, इन सभी जगह पे जो है स्किलिंग का जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव इम्पार्टमेंट जो है स्टूडेंट्स को हो.
इट इज होप्ड दैट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स विल हेल्प इन फ्रेमिंग अ रोबस्ट स्किल विजन प्लान फॉर जम्मू एंड कश्मीर टू इम्प्लीमेंट द सेम ओवर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स. तारिक राठौर फॉर परिक्रमा, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर.
Amid several centrally sponsored schemes, the Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Uthan Mahavyan, popularly known as PM Kusum Yojana, has been bringing out massive changes in the lives of people, especially from the rural and those from the tribal region. And in northeastern state of Tripura, the PM Kusum Yojana is credited for the welfare of farmers. And we have a success story filed by a correspondent.
PM Kusum is a transformative initiative launched in 2019 to ensure guaranteed irrigation for farmers across India. In remote areas with limited access to grid electricity, infertile lands and poor crop yields have long challenged farmers. PM Kusum is addressing this by providing solar-powered irrigation, enabling cultivation across three crop cycles annually and significantly boosting farmers' incomes. Previously reliant on seasonal rain, many farmers can now farm year-round. Implemented in Tripura by the Tripura Renewable Energy Development Agency under the Ministry of Power, Government of India and the state government, the scheme offers solar irrigation pumps with up to 90% subsidy. The key highlights of the scheme include subsidy structure. The central government covers 50% of the cost, the state government contributes 40%, enhanced for Tripura, and farmers pay just 10%. Borewell support. The state government also funds borewell digging up to 70 meters. Widespread reach. Out of 19,000 applications, 10,000 have been sanctioned. Most are from aspirational tribal blocks. Decentralized solar plants. Farmers with non-arable land can set up grid-connected solar plants and sell electricity to Tripura State Electricity Corporation Limited under a 25-year agreement. Financially weaker farmers can partner with developers to install solar units. Existing grid-connected pumps are being solarized, cutting reliance on diesel and conventional power sources. Solar modules come with a 25-year operational life and include 5 years of free maintenance. Excess electricity can be sold back to the grid. Kunal Shinde for Parikrama from Akashvani News, Agartala.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल.
बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट टुडे लॉडेड चेस प्लेयर दिव्या देशमुख फॉर विनिंग द फीडे विमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025. इन द राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश सेड दिव्या देशमुख हैज मेड द नेशन प्राउड बाय विनिंग द टूर्नामेंट. ही सेड दैट शी हैज डिस्प्लेड रिमार्केबल स्किल एंड रेजिलियंस एट अ यंग एज एंड अ जर्नी इज एन इंस्पिरेशन फॉर द यंग जनरेशन. And in the Lok Sabha, Speaker Om Birla praised Divya Deshmukh, saying the entire nation is elated at her win. He also expressed happiness that both the finalists of the FIDE Women's Chess World Cup were Indian women. And now on to some business news. Benchmark domestic equity indices today paired initial losses and ended with gains of over 0.5%, snapping the three-day losing streak. The market recovered sharply as the day progressed, buoyed by broad-based buying. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex climbed 447 points, or 0.55%, to close at 81,338. The National Stock Exchange Nifty 50 advanced 140 points, or 0.57%, to settle at 24,821. In the global crude oil market, Brent crude was trading 0.5%, up at $70.38 per barrel, and WTI crude was also trading over 0.5%, up at $67.08 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading up at 98,410 rupees per 10 grams, and silver 999 fine was also trading up at 1,13,740 rupees per kilogram when reports last came in.
अब आइए बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन. इस क्रम में सबसे पहले हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को याद करेंगे.
Oh, In today's episode, we remember educationist and social reformer Ishwar Chandra Vidyasagar, who died on the 29th of July, 1891. Considered as the father of Bengali prose, he was the most prominent campaigner for Hindu widow remarriage, leading to passing of the Hindu Widows Remarriage Act, 1856.
Ishwar Chandra taught at Fort William College and Sanskrit College, becoming its principal in 1950. As principal, he brought about a range of significant changes in affairs of the Sanskrit College by removing the caste barriers and opening its doors to all Hindus. Apart from modernizing and reforming Sanskrit College and establishing vernacular and girls' schools, his most important contribution to education was the textbooks he wrote and published.
Until he published his pioneering work, Varna Parichay, An Introduction to the Alphabet, 1851, there was no such model reader for the beginners. Like Varna Parichay, there was no Sanskrit grammar written in Bangla until he published his Samskrita Vyakraner Upakramanika, An Introduction to Sanskrit Grammar, in 1851. His Vyakran Kaumudi was another monumental work on grammar.
Ishwar Chandra Vidyasagar continues to be the ocean of knowledge and an inspiration in modern India too.
We also remember freedom fighter Aruna Asaf Ali, who died on the 29th of July, 1996.
Born as Aruna Ganguly on the 16th of July 1909 in Kalka, Haryana, Aruna faced opposition from family and society when she married freedom fighter Asaf Ali in 1928. She actively participated in Congress programs and the Salt Satyagraha.
On the 8th of August 1942, the All India Congress Committee passed the Quit India Resolution at the Bombay Session. The government responded by arresting the major leaders. Young Aruna Asaf Ali presided over the remainder of the session on the 9th of August and hoisted the flag at the Gwalia Tank Maidan.
The police fired upon the assembly at the session. Aruna was dubbed the heroine of the 1942 movement for her bravery.
Aruna was appointed as the first Delhi mayor in 1958. She received India's highest civilian award, the Bharat Ratna, posthumously in 1997.
We also remember freedom fighter Satyendra Kumar Mishra, who was born on the 29th of July 1912. He was imprisoned on multiple occasions for his anti-British activities.
Satyendra Prasad joined the freedom struggle in Jabalpur, Madhya Pradesh. He took part in anti-alcoholism drives, forest satyagrahas and salt satyagraha, and was imprisoned in Jabalpur jail.
In the jail, he took part in the flag satyagraha and used his blood to colour the flag red. During the Quit India movement in 1942, he led the youth in Jabalpur against British imperialism.
He was arrested and imprisoned for 18 months in Jabalpur, Nagpur, Sioni and Mandla jails.
Satyendra Prasad continued to serve people till his death on the 4th of April 1999.
Yes, and we are also remembering Vincent William van Gogh, who passed away on this day, 1890. He was a Dutch post-impressionist painter who is among the most famous and influential figures in the history of Western art. In just over a decade, he created approximately 2,100 artworks, including some 860 oil paintings, most of them in the last 2 years of his life, and his oeuvre includes landscapes, still lives, portraits, and self-portraits, most of which are characterized by bold colors and dramatic brushwork that contributed to the rise of expressionism in modern art. And also, Neha, we are remembering Lisa Ekdahl, who was born on this day in 1971. She's a Swedish popular music singer and songwriter, and she has so far released 10 albums, most of them in Swedish, but some entirely in English. Let's listen into a hit track like Marmaids, and it's from album More of the Good.
I'm getting hungry for the best. I'm getting thirsty for the meaningful. just overlook the rest. I'm getting tired of this stuffy stuff. I wanna sink my teeth into that which is tasty and delicious, and I wanna do all that with you. Like mermaids, we stay away from the shallow waters.
आज अनूप जलोटा का जन्मदिन है। अनूप जलोटा देश के जाने माने संगीतकार रहे हैं। उन्हें भजन सम्राट भी कहा जाता है। भारत सरकार उन्हें पद्मश्री से नवाज चुकी है। अनूप जलोटा ने अपने म्यूजिकल करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो में बतौर कोरस सिंगर के रूप में की थी। उनके कुछ मशहूर भजनों में ऐसी लागी लगन, मैं नहीं माखन खायो, रंग दे चुनरिया, जग में सुंदर है दो नाम और चदरिया झीनी रे झीनी शामिल है। आइए सुनते हैं अनूप जलोटा के गाए खूबसूरत गीत।
हो गई मगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन वो तो गली।
Yes, and Richard Leo Simon passed away on this day in 1960. He was an American book publisher. He was a co-founder with Max Schuster of the publishing house Simon & Schuster and father of singer-songwriter Carly Simon. After serving in World War I, Simon returned to the United States and leveraging his talent for music, worked as a piano salesman before eventually launching his career in book publishing.
आज पुण्यतिथि है वसुंधरा कोमकले की। वसुंधरा भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थी। वह भारत के प्रसिद्ध संगीत घराने ग्वालियर घराना के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थी। वसुंधरा कोमकली को वसुंधरा ताई के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने पंडित कुमार गंधर्व की गायन शैली को आगे बढ़ाया था। वसुंधरा कोमकली का जन्म जमशेदपुर झारखण्ड में हुआ था। वर्ष 2009 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया था।
Yes, and Sanjay Balraj Dutt was born on this day in 1959. He's an actor, playback singer and film producer who works primarily in Hindi cinema. He has acted in over 160 films, known for his versatile screen presence and portrayal of both heroic and anti-heroic characters. And Dutt has won several accolades. Part of the Dutt family is the son of actor-politicians Sunil Dutt and Nargis. And Dutt made his acting debut with Rocky in 1981, directed by his father. And let's listen in to a dialogue from one of his movies.
Any questions?
Yes, sir.
Yes.
वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? मेरे को एक सवाल पूछा, उसका जवाब तूने नहीं दिया।
Please sit down.
अरे बोलना यार। आदमी अगर मरता रहेगा तो वो साला फॉर्म कैसे भरेगा? और फॉर्म भरते भरते अगर मर गया तो फॉल्ट किसका है?
Please get out.
Get out बोले तो?
Get out.
अरे काई को get out? टॉप किया है, तेरे को फीस भी दिया है, अपुन नहीं जाएगा।
Yes, and Fernando Alonso Diaz was born on this day in 1981. He's a Spanish racing driver who competes in Formula One for Aston Martin.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए नेहा गोस्वामी और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट newsoraar.gov.in पर।
नमस्कार।